Siddhebhyo Om Namah Siddhebhyo Om Namah Siddhebhyo Om Shuddhatmane Namah Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Savasahunam Tihuvana Sirase Haraye Bhavabhaya Gabbhadu Nigade Panam Siddhe Jeevathana Samalina Guna Chuliyam Ocham Yeh Shri Veersen Acharya Rachit Dhavla Tika Hai जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है भूषपदंत और भूत बलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अभी यह छठी पुस्तक जो है चूली का, इसका विषय है। इसमें हम पृष्ठ संख्या यहाँ अपनी चल रही है 17 नंबर के पृष्ठ पर आ गए हैं। 17 मति ज्ञान संबंधी भेदों की यहाँ चर्चा चल रही है अपनी, जिसको कहते हैं आभिनिबोधिक ज्ञान। उसमें सबसे पहला है अवग्रह, फिर ईहा, अवाय और धारणा, इसी क्रम से होता है। अवग्रह यानी आद्य ग्रहण, सबसे पहला जो होता है वो अवग्रह कहलाता है। अवग्रह में हमने दो भेद देखे थे, याद है? अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। अर्थावग्रह ने अस्पृष्ट अर्थ के संबंध में, अस्पृष्ट यानी जो इंद्रियों से जिसका क्लोज कांटेक्ट नहीं है, ऐसा स्पर्श किए बिना वाले, यानी जैसे चक्षु इंद्रिय के विषय है, वो चक्षु को स्पर्श नहीं करते, वो दूर है, फिर भी उसका ज्ञान होता है। मन का भी ऐसा ही है, तो उसको कहते हैं अर्थावग्रह। और जिन इंद्रियों के विषय उनके साथ स्पर्श करते हैं, तो उसको पहले जो होता है वो है व्यंजनाग्रह, उसके पश्चात अर्थावग्रह, और बाद में यह अवय धारणा। यानी अन्य चार इंद्रियों के बारे में अर्थावग्रह के पहले व्यंजनावग्रह होता है, जिसको हम कहते हैं हम अपने खास ख्याल में नहीं आ रहे, ऐसे अव्यक्त रूप से उसका ज्ञान चलता है। ज्ञान में नहीं आया ऐसा नहीं, क्योंकि ज्ञान के भेद चल रहे। अभी हम आगे यहाँ देख रहे हैं, इहा की भी बात हमने देखी थी कि इहा ज्ञान संदेह नहीं है, यानी जो संशय कहते हैं ज्ञान, यानी जो मिथ्या ज्ञान कहो या दोष वाला, जो संशय वाला, तो संशय अलग बात है और इहा ज्ञान अलग बात है। संशय के या संदेह, यानी ये क्या चीज है ऐसी जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और उस जिज्ञासे के साथ अधिक जानने के प्रति जीव उद्युक्त होता है, उसको कहते हैं इहा ज्ञान। और जब संदेह दूर हो गया तो तब उसको हम कहेंगे अवाय ज्ञान। तो अब यहाँ हम अवाय की चर्चा करेंगे, नीचे का पैराग्राफ 17 नंबर के पृष्ठ पर। इहा ज्ञान से जाने गए पदार्थ विषयक संदेह का दूर हो जाना अवाय है। एक एक शब्द बहुत जान बूझ कर डाला है, इहा पूर्वक ही अवाय होगा। एक बात, किसी को डायरेक्ट अवग्रह के बाद अवग्रह के बाद अवाय हो जाए ऐसे नहीं, पहले ईहा होगी फिर अवाय होगा, और फिर उससे जो पदार्थ ज्ञान जाना है उसके संबंध में जो संदेह है वो दूर हो गया। कोई भी संदेह दूर होने को यहाँ अवाय ज्ञान नहीं कहा, ये अवाय है। पहले ईहा ज्ञान से क्या यह भव्य है अथवा अभव्य है, इस प्रकार जो संदेह रूप बुद्धि के द्वारा विषय किया गया जीव है, यानी अपना यहाँ ज्ञान का विषय है जीव, तो जीव के बारे में ये भव्य है कि अभव्य है ऐसा संदेह जब मन में आया, सो यह अभव्य नहीं है, भव्य ही है, क्योंकि उसमें भव्यत्व के अविनाभावी, यानी वो जीव भव्य ही है ऐसा ज्ञान हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ भव्यत्व के लक्षण उसको पता चले, भव्यत्व के साथ अविनाभावी, अविनाभावी यानी जो भव्यत्व के बिना हो ही नहीं सकते हैं, ऐसे कौन कौन है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र गुण पाए जाते हैं, यानी रत्नत्रय कहो या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के जो वहाँ उसको पाया गया, तो उससे निश्चित हुआ कि ये भव्य ही है। इस प्रकार से उत्पन्न हुए विश्वस्त ज्ञान का नाम अवाय है। निर्णयात्मक जो ज्ञान है उसको अवाय कहते हैं। शंकाकार पूछता है, लिंग से उत्पन्न होने के कारण अवाय श्रुत ज्ञान है, लिंग यानी चिन्ह, तो कौन सा चिन्ह वहाँ समय दर्शन ज्ञान चारित्र वहाँ देखा तो उसके द्वारा निर्णय किया कि यह जीव भव्य है, भव्य ही है। तो शंकाकार पूछता है कि यहाँ लिंग के द्वारा इसका निर्णय हुआ है तो इसको श्रुत ज्ञान कहेंगे हम। उसका समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा ही उसने पूछा था ना, अन्य पदार्थ के बारे में जो होगा श्रुत ज्ञान में मूलभूत मति और श्रुत ज्ञान में डिफरेंस। मति ज्ञान तो किसी विशिष्ट इंद्रिय के उसके विषय को जानता है, और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के अवलंबन से किसी अन्य पदार्थ को जानता है, यानी उसका विषय अन्य पदार्थ है। अब यहाँ जो अवाय ज्ञान हो रहा है वो उसी पदार्थ के बारे में निर्णयात्मक हो रहा है, भले वो किसी चिन्ह के द्वारा निश्चय किया है फिर भी वो उसी विषय के संबंध में, विषय बदला नहीं है। तो इस समाधान में क्या कहते हैं, अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ से पृथकभूत अर्थ का अवलंबन करने वाले, पृथकभूत यानी अन्य पदार्थ का अवलंबन करने वाले, ये श्रुत ज्ञान की बात चल रही है कि मति अवग्रह के द्वारा जिस पदार्थ का ग्रहण किया है, जाना है, उससे अन्य कोई पदार्थ है उसको अवलंबन करने वाली निर्णय रूप, जिसमें निर्णय होता है, ऐसी और कैसी है? लिंग जनित बुद्धि को, लिंग जनित यानी किसी चिन्ह के द्वारा जो उत्पन्न हुई है ऐसी बुद्धि, कोई लक्षण देखकर जो जिस जानने में आया है ऐसी बुद्धि, उसके उस बुद्धि को श्रुत ज्ञान पना माना गया है। बुद्धि कहो या ज्ञान कहो, श्रुत ज्ञान किसको कहना है? पहले मति ज्ञान के द्वारा उसका ग्रहण किया था और फिर किसी अन्य पदार्थ को उसके चिन्ह के लक्षणों के द्वारा जाना, उसको कहते हैं श्रुत ज्ञान। किंतु अवाय ज्ञान अवग्रह से गृहित पदार्थ को ही विषय करता है, उसका विषय नहीं चेंज हुआ है, वो मति ज्ञान ही है परंतु वो निर्णयात्मक की तरफ जा रहा है। पहले अवग्रह हुआ, फिर उसका उसके संबंध में अधिक जानने की उत्सुकता हुई, उसका निर्णय करने के प्रति ज्ञान उद्युक्त हुआ, और जब निर्णय हुआ तो हम उसको अवाय ज्ञान कहते हैं। उसी विषय के बारे में मति ज्ञान में कहेंगे उसी विषय के बारे में, और श्रुत ज्ञान में किसी अन्य विषय के बारे में। और यह ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होता है इसलिए वह श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता। देखो और एक डिफरेंस ख्याल में आया आपको, श्रुत ज्ञान तो अवग्रह के पश्चात बताया था, अवग्रह नाम के मति ज्ञान के पश्चात श्रुत ज्ञान होता है ऐसा कहा, और अवाय ज्ञान इहा के पश्चात होता है। देखो पहले लाइन में क्या लिखा है, अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ से पृथकभूत अर्थ, यानी वहां पूरा मति ज्ञान धारणा तक आए और फिर वो श्रुत ज्ञान हो ऐसी उसकी बात नहीं किया। अवग्रह से ग्रहण किया, शब्द सुना और तात्काल उसका जो अन्य कोई उसका जो शब्द वाचक है ना, उसका वाच्य कोई पदार्थ है, जैसे हमने चौक कहा खड़ू, तो चौक ऐसा तो हमने खाली शब्द सुने और उसके द्वारा हमने वो पदार्थ को जाना, हमारे विषय वो चौक कौन से कलर का है उसके प्रति हमारे विचार चले गए, तो उसको नहीं नहीं अवग्रह के पीछे को देखा है सुना है वैसी बात नहीं है, निर्णय नहीं हुआ के प्रति, उसके बाद हमने कोई अन्य पदार्थ को बताने वाला है वो, उस संबंधी विचार चले, यानी उसको नेसेसरी नहीं कि अवाय के बाद ही श्रुत ज्ञान हो, अवग्रह के बाद भी होगा। देखो यहाँ इहा ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होता है इसलिए वह श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता। फिर शंका, अवग्रह और अवाय इन दोनों ज्ञानों के निर्णयत्व के संबंध में कोई भेद न होने से एकता क्यों नहीं है? जो जानना है जानकर ये कौन सा पदार्थ है, अवग्रह के द्वारा भी जाना और अवाय के द्वारा भी जाना, तो उसमें क्या ऐसा डिफरेंस क्यों कहा? वो दोनों एक ही होने चाहिए। उसका समाधान, निर्णयत्व के संबंध में कोई भेद न होने से एकता भले ही रह आवे, किंतु विषय और विषयी, ये याद है क्या? विषय किसको कहना? जो पदार्थ है उसको विषय कहते हैं, ज्ञेय को, और विषयी ज्ञान को कहते हैं। यहाँ इंद्रियों की बात चल रही है। तो विषय और विषयी के सन्निपात के अनंतर, सन्निपात यानी उनका कांटेक्ट, कांटेक्ट यानी क्लोज कांटेक्ट की जरूरत नहीं क्योंकि चक्षु का तो विषय तो दूर रहेगा, सन्निपात यानी उसका योग्य मर्यादा के अंदर आकर्षित होना। पहले हमने उसका अर्थ देखा था, वो स्थूल है, वर्तमान है और कुछ मर्यादा, यानी जो इंद्रियों की जो क्षमता है उसके अंदर वाला होगा वो। तो सन्निपात के अनंतर उत्पन्न होने वाला प्रथम ज्ञान विशेष, प्रथम ज्ञान विशेष यानी ज्ञान की परे ना, वो जो प्रथम सर्वप्रथम क्या होता है, हमने उसको दूसरी भाषा में आद्य ग्रहण ऐसा कहा था। ये जो प्रथम में प्रथम होता है वह अवग्रह है, उसको अवग्रह कहते हैं। अवग्रह की ये डेफिनेशन है, परिभाषा है। और अभी अवाय किसको कहना? यहाँ के अनंतर काल में, यहाँ के पश्चात होता है, यहाँ के अनंतर काल में उत्पन्न होने वाले संदेह के अभाव रूप अवाय ज्ञान होता है। संदेह को दूर करने वाला वो अवाय ज्ञान है। इसलिए अवग्रह और अवाय, इन दोनों ज्ञानों में एकता नहीं है क्योंकि उनका दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। अवग्रह तो सबसे प्रथम होता है, उसके पश्चात यह और उसके बाद अवाय होता है। अब धारणा की बात पर बताएंगे, धारणा की डेफिनेशन, परिभाषा। अवाय ज्ञान से निर्णय किए गए पदार्थ का, अवाय तो निर्णयात्मक ज्ञान है, तो जो जिस पदार्थ का निर्णय हुआ है उसका कालांतर में विस्मरण न होना धारणा है। हम तो कितनी ही बातें निर्णय से जान भी लेते हैं परंतु कुछ काल के बाद कुछ उसका ज्यादा, यानी जो हम कहते हैं इम्प्रेशन हमारे मन पर, वो नहीं रहते। बचपन की कुछ ही घटनाएं याद है, सभी की सभी नहीं याद है, तो वे ही याद है जो धारणा ज्ञान तक पहुंची है। हमें ऐसा लगे कोई विशिष्ट बातें याद रहती है। अभी बचपन में मैं तीसरी स्टैंडर्ड में होंगी तो ये महामस्तकाभिषेक देखा था, उसकी कितनी सारी बातें याद है, तभी के जो कुछ दृश्य हो गए तो वो इतने गहराई से अपने मन पर, अभी मन कहना नहीं है मगर ये जो धारणा कहेंगे हम उसको, तो कालांतर के बाद भी वो पूरी स्मृति में आता है। हम तो ये तो किसी ने कोई अपना अपमान किया है वो भी कितने काल के बाद याद रखते ना, धारणा में रह जाते और फिर गुस्सा भी करते। याद रखना अलग बात है और उससे वैसे ही क्रोध रूप, यानी वो क्रोध का भी परिणाम चलता रहता है। उसको तो अनंतानुबंधी टाइप का कहा कि कालांतर के बाद भी वो क्रोध के संस्कार चलते रहते, बैर के चलते रहते, भवों तक भी चलते वो, नहीं मालूम आपको? पार्श्वनाथ की और कमट के तो ये 9-10 भवन से उनका, वो कमट का जो जीव, उसका तो जो वैर की भावना उसकी, वो तो कितने भवन तक चलती रही उसकी। पर यहाँ उसकी बात नहीं है, कषायों की बात यहाँ नहीं, यहाँ तो ज्ञान की बात है। देखो, जिस ज्ञान से कालांतर अर्थात आगामी काल में भी अविस्मरण का कारणभूत संस्कार, इसको संस्कार, ज्ञान के संस्कार की बात है। अविस्मरणभूत, अविस्मरण का कारणभूत, अविस्मरण यानी हम कहेंगे मेमोरी का कारणभूत, यानी जिसके कारण उसका स्मरण हो सके ऐसा संस्कार।
मेमोरी कौन से ज्ञान में आए?
ये स्मृति मति ज्ञान का भेद है। देखो, जिस जो धारणा तक ज्ञान आया है उसी का कालांतर में स्मृति हो सकती है, जो धारणा तक नहीं है उसकी स्मृति नहीं है, तो वो स्मृति में नहीं आ सकता। वो ज्ञान की अपेक्षा वाले ये संस्कार है, जो ऐसे संस्कार हो गए, धारणा तक आ गए, उसको ही हम वो ज्ञान का संस्कार, वो उस पर्याय में वो लब्ध रूप से चलता रहता है। नहीं, धारणा अवधि ज्ञान नहीं है, धारणा ये मति ज्ञान का भेद है, अवधि ज्ञान अलग बात है। देखो, जिस ज्ञान से कालांतरे ने कुछ काल पश्चात अर्थात आगामी काल में भी अविस्मरण का कारणभूत, अविस्मरण का कारणभूत, अ भी लगाया और विस्मरण भी लगाया और दोनों ही निकाल, तो स्मरण का कारणभूत ऐसा कह सकते हैं हम। अविस्मरण का यानी स्मरण का या स्मृति का, तो स्मृति का कारणभूत ऐसा संस्कार जीव में उत्पन्न होता है, उस ज्ञान का नाम धारणा है। हम कहते हैं ना, वो तो शास्त्र स्वाध्याय करो, तत्व निर्णय करो, तो निर्णय करो और ऐसे गहरे संस्कार डालो, ये संस्कार ज्ञान में उसकी धारणा बनी रहेगी तो कालांतर से उसका स्मरण हो सकता है। उसका नाम धारणा है। अवग्रह आदि चारों ही ज्ञानों की सर्वत्र क्रम से उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि उस प्रकार की व्यवस्था पाई नहीं जाती। देखो, इस वाक्य से ऐसा नहीं समझना कि कोई डायरेक्ट धारणा होता होगा, कोई डायरेक्ट अवय होता होगा, कोई डायरेक्ट इहा होता होगा अवग्रह के बिना, परंतु क्रम से उत्पत्ति है ने, कोई ज्ञान अवग्रह के बाद धारणा तक पहुंचे ही पहुंचे ऐसी बात नहीं है। कोई अवग्रह होकर ही रह जाता है, कितने ही तो व्यंजन अवग्रह होकर ही रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो कुछ यानी वो अव्यक्त रूप से उसका ग्रहण हुआ था, ये भी बात अपने बुद्धि में नहीं आती। उसको ही कहते हैं ना व्यंजनावग्रह, ज्ञान हुआ है वहाँ, परंतु जिसको हम कहते हैं ना बुद्धिपूर्वक है या वो तो ग्रहण हुआ है उसका, यानी हमारे अपने ख्याल में आए ऐसा वाला ज्ञान नहीं। ज्ञान तो है वहाँ, क्योंकि वो अवग्रह नाम का भेद है, अवग्रह ये ज्ञान का भेद है। व्यंजनावग्रह होगा, अचक्षु दर्शन, फिर व्यंजनावग्रह, नहीं नहीं फिर चक्षु दर्शन नहीं, फिर चक्षु दर्शन वो तो इंद्रिय ज्ञान बदलेगा, वो अवग्रह स्पर्श संबंधी था और आपने देखा तो फिर वो चक्षु संबंधी अवग्रह चालू हो जाएगा, चक्षु दर्शन भले बीच में हो जाए। वो चक्षु दर्शन के पश्चात चक्षु संबंधी अवग्रह चालू हो जाएगा। चक्षु दर्शन कब कहेंगे? जब चक्षु संबंधी ज्ञान हो जाएगा, यानी यहाँ कुछ मच्छर बैठा था, वहाँ तो अचक्षु दर्शन हुआ, फिर अपने ख्याल में आया वो तो ज्ञान हुआ, अवग्रह ज्ञान हुआ, फिर हमने देखा तो चक्षु दर्शन हुआ पहले, अभी वो अवग्रह तक होकर वो मति ज्ञान रुक गया है, उस संबंधी स्पर्श संबंधी मति ज्ञान रुक गया, फिर यहाँ बीच में चक्षु दर्शन हुआ, देखा ना, फिर क्या क्या काट रहा है तो वो मच्छर दिखा हमको, तो ये चक्षु इंद्रिय संबंधी अभी ये नया अवग्रह चालू हो गया ना, इंद्रिय और उसका विषय दोनों बदल गए। वहां तो विषय अपना स्पर्श था और जानने वाला इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय था, जब भी आपने आंख से देखा तो विषय अभी रूप है, वर्ण उसका विषय है, और फिर चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम जान रहे हैं, तो वहां बदल गया ना ज्ञान। चक्षु संबंधी अवग्रह हुआ,
फिर उसी समय वो दर्शन में मतलब अचक्षु और चक्षु में होता है,
हो गया ना, चक्षु के बाद ज्ञान चालू हो गया, अभी चक्षु दर्शन के पश्चात चक्षु, अभी चक्षु संबंधी ज्ञान चालू हो गया। हाँ। उपयोग तो एक है ना, अभी वहाँ पर उपयोग रूप एक बात है,
जैसे ज्ञान में अवग्रह व्यंजन, व्यंजन से अवग्रह, व्यंजन से अर्थावग्रह हुआ,
चक्षु संबंधी व्यंजन अवग्रह नहीं होता। हाँ, अचक्षु दर्शन, व्यंजनावग्रह, फिर अर्थावग्रह, ये स्पर्श संबंधी हुआ आपको, अरे देखा हमने तो, देखा तो उस संबंधी, वो तो चक्षु संबंधी हुआ, यानी चक्षु का दर्शन हुआ पहले,
चक्षु संबंधी हुआ,
चक्षु दर्शन हुआ, क्योंकि इंद्रिय भी बदला ना, तो उस संबंधी जो दर्शन होगा वो वहां होगा। फिर चक्षु दर्शन के पश्चात चक्षु इंद्रिय संबंधी अभी जहाँ अवग्रह हुआ वो तो डायरेक्ट अर्थावग्रह होता है, अवग्रह हुआ अभी, वो तो चश्मा नहीं लगाया था तो वो नहीं दिख रहा था वो क्या है, तो फिर वो जानने की बराबर इच्छा हुई तो वो ख्याल में आ गई, यही बात है, यानी वो संदेह दूर करने के प्रति वो यहा हुआ, वो धारणा हुआ, फिर ठीक है वो तो निकल गया, मच्छर भी निकल गया, वो क्या धारणा तक नहीं अवाय तक आ गया, निर्णय हो गया। चश्मा लगाया, भले चश्मा लगाया तो निर्णय हुआ ऐसा नहीं है, उसकी बात नहीं कर रही कि बिना चश्मे के भी निर्णय हो सकता है ना, उसकी बात मैं कर रही। नींद में थे तो फिर बराबर देखने की कोशिश की, क्या ये काला क्या दिख रहा है। यही तो बात मैं बता रही हूँ, व्यंजनाग्रह के बाद कभी कभी कोई ज्ञान व्यंजनाग्रह तक होकर ही निकल जाएगा, पता नहीं अभी कहीं यहाँ कोई मच्छर काट के निकल भी गया या अपना वहाँ ध्यान भी नहीं था, उपयोग भी नहीं था, फिर भी वो व्यंजन अवग्रह में आ गया। हाँ, क्रम से चारों होना जरूरत नहीं, एक होकर छूटे या दो तक जाके फिर छूटेगा या यहाँ तक जाके छूटेगा या अवाय तक जाके छूटेगा, कोई कोई धारणा तक जाएगी, ये कहना चाहते हैं। परंतु क्रम छोड़कर डायरेक्ट अवाय हो या डायरेक्ट यह हो ऐसी बात नहीं, या क्रम छोड़कर इन्हें पहले अवग्रह नहीं हुआ है और किसी को धारणा ही हो जावे, ऐसी बात नहीं हो सकती, ये बात यहाँ कहनी। नहीं नहीं, पर स्पर्शन संबंधी पहले अवग्रह ही होगा। वो यहाँ नहीं बताना है।
हाँ,
हाँ अवग्रह ही होती है, कभी भी पहले ज्ञान होगा तो अवग्रह ही होगा, अभी अवग्रह के बाद इहा होगी, होने वाली हो आगे, तो यानी जिसको इहा होने इहा ज्ञान है उसको उसके पहले अवग्रह हो चुका है, बिना अवग्रह के इहा नहीं होगी, बिना इहा के अवाय नहीं होगा, बिना अवाय के धारणा नहीं होगी। ऐसा नहीं, अभी धारणा तक उसमें भी आप रुचि ले सकते हैं, उसमें ज्ञान का, जैसे बच्चे होशियार बहुत होते हैं स्कूल में, उनका उस तरफ ध्यान नहीं देता है, वो तो उनके कुछ अलग उनकी रुचि है, हमारी जिसमें रुचि है वो बिना रटे हुए वो सब्जेक्ट हमारे ख्याल में आते हैं। अपने स्वयं के अनुभव की बात करो, स्कूल में कोई एक विशेष अपने विषय अपने यानी रुचि का है तो उसका अभ्यास भी नहीं करना पड़ता है, परीक्षा में तो उसमें टॉप कर जाते हैं। वो ज्ञान का है ना रुचि है वो, तो अभी तो इसमें किसमें उसके ज्ञान का ये जिज्ञासा उसमें क्यों हो रही, अभी उसमें वो निमित्त पने हो जाएगी।
देखो रुचि ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, श्रद्धा गुण से ज्ञान नहीं होगा, ये निमित्त है,
वो निमित्त जिज्ञासा, जिज्ञासा लेना उसमें, ज्ञान की अपेक्षा बात करना है तो उसको किस विषय में जिज्ञासा है जानने की, उसकी अपेक्षा।
देखो कहने का कथन अलग प्रकार से होता है, हमें समझना सही रूप से है, जिसको रुचि होगी वही आत्मा की तरफ जाएगा, तो जाएगा यानी आत्मा को जानेगा, तो जानना यह ज्ञान गुण का कार्य है, रुचि यह श्रद्धा गुण की पर्याय है, ये तो निमित्त से कथन होगा, उसको हमें सही रूप से ध्यान में लेना है।
अभी आत्मा संबंधी जो तत्व निर्णय की बात आती है, सात तत्व है या जो देवगुरु शास्त्र का स्वरूप है उसका निर्णय करना है, तो उसके प्रति भी वो जो जिज्ञासा है ना अंदर से, वो देशना लब्धि के प्रकरण में आता है, ज्ञान की है, वो ज्ञान की पर्याय जिज्ञासा, तो जिसको जिज्ञासा है उसका ऐसा निमित्त गुरु भी मिल जाएंगे, ये बात आती है देशना लब्धि के प्रकरण में। देशना लब्धि तो जीव की ज्ञान की पर्याय, देशना लब्धि ये ज्ञान की पर्याय है, क्योंकि बुद्धि में उसका निर्णय होता है, धारणा होती है, वो उसके है ना अंग की, सुनना यानी श्रवण, ग्रहण यानी अभी उसको समझना, सुनना समझना फिर वो धारणा में लेना उसका तत्व निर्णय करना आदि सभी जो बातें हैं वो तो ज्ञान की पर्याय में होती रहती है। और जब जीव की जो तत्व जिज्ञासा है वही उसको वो मार्ग बना देती है, वही उसको वो गुरु का निमित्त भी सहज मिल जाता है। फिर भी निमित्त की ओर से कहेंगे तो गुरु के बिना कुछ नहीं होता ऐसा कहेंगे, गुरु के बिना वो देशना नहीं मिलती ऐसा भी कहेंगे। कथन अपेक्षित हो सकता है, कथन में कोई दोष नहीं, अभिप्राय वैसा होगा तो दोष है। आप कहेंगे आप भी ऐसा कथन करते, वो लोग भी ऐसा कथन करते और उनकी बात खोटी और आपकी सच्ची, वो भी कहते गुरु के बिना ज्ञान नहीं और आप भी अभी कह रही हैं, परंतु उसके पीछे का अभिप्राय पहचानना होगा। सही अभिप्राय के साथ अपेक्षा सहित कथन हो तो कोई बात नहीं। पांचों समुदायों का वहां यथा योग्य, हमने जो निरपेक्ष नहीं की बात की थी ना, अन्य को बिल्कुल लेना ही नहीं, बस गुरु किया ज्ञान अपने को हो गया। ये जो अन्य को उसकी अपेक्षा छोड़कर सर्वथा ही एक पक्ष लेते हैं उनका निषेध है, उस मान्यता का निषेध है, उनका यानी उस किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि सभी जीव मिथ्यात्व में से ही उसको पार करके सम्यक्ति होते हैं। जो जो आज तक सिद्ध हुए हैं वो तो पहले संसारी थे और संसारी थे तो सम्यक्त होने के पहले मिथ्यात्वी थे, तो मिथ्यात्वी थे तो उनकी ऐसी अनेक मान्यताएं थी, तो किसी व्यक्ति विशेष का यह निषेध नहीं है। उस मान्यता को हम टटोले कि उसमें कुछ गलत हो तो अभिप्राय सुधारने की बात है। यहाँ अपनी तो ज्ञान की बात हो रही है, ये जो अभी हमने क्या निश्चित किया यहाँ देखो।
और एक बात भी हो जाती है कि प्रमाण द्वारा जाने हुए विषय में एक अंश को जानना वो ज्ञान
नहीं है,
तो प्रमाण जाना ही नहीं और
ऐसी बात। एक अंश को वो सर्वथा रूप से जान रहा है, वो अंश रूप मैं अंश को जान रहा है ऐसे भी मन नहीं मानता, वो पूरे रूप से वही एक अंग है, बस वही पूर्णी वस्तु है ऐसी मानता है। पांचों है, पांचों सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, ये प्रमाण की परिभाषा है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम।
अच्छा मैं ये पूछना चाहता था कि जो मुनिराज ध्यान में बैठे हैं उनको कोई सियाल ने आके उनका पूरा पग काट दिया, तो अभी ये मुनिराज को यहाँ ये मैं शरीर नहीं हूँ वो तो जानने में आता है और वो काट रहा है वो भी जानने में आता है, लेकिन उसका उपयोग तो अपने आत्मा में ही अपने ज्ञान में लगा दो, तो ये कहाँ जाके रुक जाता है?
देखो वो तो अवग्रह तक आके वो चला जाता है, उसके आगे लंबाते नहीं, उपयोग उसमें लंबाता नहीं, उनके ज्ञान में आता नहीं है, बात नहीं है। ज्ञान में आता है, जानेंगे ना वह कि यहाँ ऐसी अवस्था हो रही है, अभी किसको हार्ट अटैक आया समझो, तो जानेगा कि नहीं जानेगा, यानी वो आत्मा में लीन है वो कैसे जानेगा, ऐसी नहीं बात। तो उपयोग उसमें नहीं लंबाते, वो तो आत्मा के संबंध में वो विकल्प चलेंगे, या ये तो परद्रव्य की पर्याय इस तरह से उसको पर तरीके से उसको जानेंगे, उसमें रुचि या उस जानने के प्रति रुचि नहीं है। परद्रव्यों को तो जानेंगे तो केवल भगवान भी सबको जानते हैं, परंतु वितरागता के साथ जान रहे हैं। ऐसे मुनिराज भी जानेंगे तो वहाँ तीन कषाय का अभाव हुआ है, उतनी वितरागता के साथ उनका परद्रव्य को भी जानना होगा। श्रेणी में भी वो तो छह द्रव्य उनके ज्ञान का विषय हो सकते हैं श्रेणी में, तो हम तो शुद्धोपयोग यानी अकेला विषय शुद्ध आत्मा ही उसका विषय ऐसा समझते हैं। उसको देखो स्व को स्वपने से और पर को परपने से जा रहे ज्ञान ज्ञान स्व एक ही समय में। अब ये शुद्धोपयोग जो है ना वो शब्द ही ऐसा है कि द्रव्यानुयोग वाला है कि कर्णानुयोग वाला है शुद्ध उपयोग। आप कहेंगे क्या ऐसे दो अलग अलग शुद्ध उपयोग होते हैं? कर्णानुयोग में जिस गुणस्थान में जितनी विशुद्धि यानी शुभ परिणाम या संकलेश जो कुछ है उसकी अपेक्षा से कथन होगा। कर्णानुयोग बताएगा आठवें गुणस्थान में कितनी विशुद्धि है, इतनी विशुद्धि है, यानी वहाँ उतना राग अभी बाकी है तो वहाँ उतना बंध भी है, आठवें गुणस्थान में बंध योग्य प्रकृति। फिर नौवे गुण स्थान की बात करेंगे, वहां विशुद्धि बढ़ गई है, शुभ परिणाम मंदता की यानी विशुद्धि आगे बढ़ रही है, यानी कषाय घट रहे हैं, यथा योग्य कषाय ही कहेंगे ना, मंद कषाय को भी कषाय कह रहे, तो वहां तो वितरागता बढ़ रही है, कषाय घट रहे हैं यानी विशुद्धि बढ़ रही है, उसकी अपेक्षा कथन आता है, परंतु पूर्ण पूर्ण शुद्धोपयोग 12वें गुणस्थान में कहेंगे वहां।
देखो आपका प्रश्न ऐसा है कि जब यह ज्ञान स्वपर प्रकाशक है तो शुद्धोपयोग में वह स्व को तो जान रहा है और पर को भी जान रहा है क्या नहीं, ऐसा प्रश्न है ना आपका। तो पहले आपने क्या बताया, ज्ञान का स्वभाव क्या है, स्वपर प्रकाशक है, कब है वो, अशुद्धोपयोग में। हाँ तो फिर शुद्धोपयोग में नहीं हुआ ऐसा कैसा कह रहे हैं आप, हमेशा रहेगा ऐसा भी बोलते हैं, स्वभाव भी है ऐसा भी बोलते हैं, और फिर डाउट लेते हैं कि वे शुद्धोपयोग में जानेगा कि नहीं। अरे केवल ज्ञान में भी जानेगा।
ये पेंसिल का रंग कौन सा है, काला है ना, तो जब आप काला है ऐसा जानते हैं उसी समय ये सफेद नहीं, ये लाल नहीं, ये लीला है, पीला नहीं, ये सब जान रहे आप, ये ज्ञान की पर्याय है आपकी। ये 80 से कहो तो ये काला है,
मैं जान रहा हूं,
वो भी जान रहे मैं इसे जान रहा हूँ। अभी उसकी जितनी चर्चा करे उतनी कम है। द्रव्यान योग में तो जो स्थूल हिंसादि परिणाम है, बुद्धिपूर्वक राग जिसको कहते हैं, वो आपका उपयोग वो शुभ या अशुभ में नहीं है, उसको शुद्धोपयोग कहा है। हाँ अभी नीचे के गुणस्थानों में पर को जानते हुए वो तो उसके राग उत्पन्न होते ही है, इसलिए वहाँ पर के जानने का ऐसा अपेक्षा सहित निषेध होता है, परंतु पर को पर तरीके स्व को स्व तरीके जान, वही तो जानना है, नहीं तो हम कैसे कह सकते ये स्व को जान रहा है। जिसको जान रहा है उसमें कोई पर पदार्थ नहीं है, वो नास्ति से ऐसे कथन आता है ना, जिसमें राग नहीं है, जिसमें शरीर नहीं है, ये कुछ नहीं है, ऐसा आत्मा है, तो क्या वो शून्य है क्या। तो कथन में ये बातें आती है, और जितना कथन करेंगे उतना वो तो शब्द का भंडार बढ़ता रह जाता है, और हम वो शब्दों में ढूंढते हैं आत्मा को। आप दर्शनावरण तो दर्शन संबंधी आवरण है।
पहले प्रश्न रिपीट कर।
आपका प्रश्न ऐसा है कि दर्शनावरण क्या सबका एक साथ कम हो जाता है, जैसे 42 इयर्स में देखना कम हो जाता है। देखो ये जो आप दर्शन यानी क्या, ज्ञान के पहले होने वाली जो दर्शन गुण की अवस्था है उसको दर्शन कहा है, और वहाँ जो आवरण का कार्य है जो कर्म का, उसको दर्शन आवरण कहा है।
आपके हिसाब से दर्शन का अर्थ जब आंख बंद करके सोया हुआ है तो उसको दर्शन काम नहीं कर रहे हैं। हाँ तो फिर अभी दर्शन गुण का कार्य और देखना,
आप इसका घोटाला कर रहे हैं। कहो तो कहो, आपको अगर पूछना है तो क्या चक्षु संबंधी ज्ञान सबका इतना ही कम हो जाता है, ऐसा कहना है ना आपको।
तकरीबन
ऐसी बस नहीं है, अभी ये जो है वो तो
अभी आपको चश्मा मुझे नहीं है, मैं आई एम 64। हाँ ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हम जनरल नियम निकालते हैं
ज्ञान में। ये जो परावलंबी कहा है ना इंद्रिय ज्ञान को, वहाँ ये बाह्य इंद्रियों की, ये इंद्रिया भी नहीं, ये तो उपकरण है बाह्य उसके। अभी ज्ञान कम हुआगा, अगर ज्ञान या क्षोभशम ही कम हो जाता आपके अनुसार तो चश्मा लगाने से वो सुधरता नहीं, क्षोभशम तो उतना का उतना ही रहता है। परंतु अभी वहाँ इंद्रियों का जो निमित्त बनता है, अभी बाह्य में वो इंद्रियों की शरीर की अवस्था है, इससे तो जाना जाता है ना, अरे क्षोभशम तो है वहां पर, और ये घड़ी में अब उतार के रखो चश्मा तो नहीं दिख रहा है, ये तो जो निमित्त बनता है ये तो पराधीनता है उसकी। तो आत्मा को जानना है तो कौन सा चश्मा पहनना, वो तो डायरेक्ट ज्ञान है, उसमें कोई अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं, प्रकाश की जरूरत है ना, इंद्रियों की जरूरत है, गुरु आपको हाथ पकड़ के ले जावे, ऐसी कोई पराधीनता है नहीं उसमें। देखो ये मैं नीचे का पैराग्राफ फिर पढ़ती हूँ। अवाय ज्ञान से निर्णय कहे गए पदार्थ का कालांतर में विस्मरण न होना धारणा है। धारणा की बात देख रहे थे ना, जिस ज्ञान से यानी जो ये धारणा ज्ञान से कालांतर अर्थात आगामी काल में भी अविस्मरण का कारणभूत यानी स्मृति का कारणभूत संस्कार जीव में उत्पन्न होता है। अभी हम संस्कार की बात की ना हमने, उस ज्ञान का नाम धारणा है। अवग्रह आदि चारों ही ज्ञानों की सर्वत्र क्रम से उत्पत्ति नहीं होती है, यानी सब जगह वो अवग्रह यहाँ अवाय और धारणा तक जाए ही ऐसा नहीं, परंतु जिसको अवाय होगा वो क्रम से पहले अवग्रह फिर यहाँ फिर अवाय ही होगा, क्योंकि उस प्रकार की व्यवस्था पाई नहीं जाती। इसलिए कहीं तो केवल अवग्रह ज्ञान ही होता है, कहीं अवग्रह और यहाँ ये दो ही ज्ञान होते हैं, कहीं पर अवग्रह इहा और अवाय ये तीनों भी ज्ञान होते हैं, और कहीं पर अवग्रह इहा अवाय और धारणा ये चारों ही ज्ञान होते हैं। ये हमने बात देखी अभी। अब उसमें भी अब ये जो हमने चार प्रकार देखे, अवग्रह फिर इहा फिर अवाय और फिर धारणा, ये तो किसकी अपेक्षा, वो ज्ञान की अपेक्षा भेद पे। अब ज्ञान जिसको जान रहा है विषय की अपेक्षा भी उसको भेद हो गया, वो कितने विषयों को जान रहा है, वो विषय कैसा है, एक है का एक प्रकार का है। जैसे एक पेंसिल को हम जान रहे तो एक वस्तु को जान रहे, अभी एक जैसी अनेक 10-12 पेंसिल होगी तो हम एक प्रकार की वस्तुओं को जान रहे, उसको एक विध कहेंगे। बहु यानी अनेक चीज़ों को जान रहे और बहु प्रकार की, यानी ऐसा भी होता है ना, बहुत है गाय बहुत है, परंतु वो एक प्रकार की भी हो सकती है या अनेक प्रकार की भी हो सकती है, या धान है अनाज है वो अनेक प्रकार का, कोई दाल है गेहूं है चावल है वो अलग अलग प्रकार के, या एक प्रकार के भी ज्यादा क्वांटिटी हो सकती है।
बाल
बाल।, बाल में अनेक प्रकार कैसे करें, हाँ अनेक बाल, एक साथ जानने की बात है। देखो इसकी बात यहाँ आती है, ऐसे ये 12 अलग अलग प्रकार करेंगे हम विषयों में, तो 12 संबंधी अवग्रह, 12 संबंधी इहा, 12 संबंधी अवाय, 12 संबंधी धारणा, या एक एक में 12 प्रकार लगा सकते हैं विषय की अपेक्षा।
12 नंबर कहाँ से आया?
हाँ वो अभी देखेंगे हम, ये कौन कौन से है, तो एक एक विधि बहु बहुविधि ऐसे जो अलग प्रकार है उसकी बात हम देखेंगे अभी। देखो उनमें एक एक अर्थात अवग्रह इहा अवाय और धारणा यानी ये जो चार प्रकार देखे थे, उस प्रत्येक प्रकार में ये 12 बातें बनती हैं, यानी बन सकती है। कौन कौन सी, बहु बहुविध, पहले ये 6 बातें बताएंगे और इनसे उल्टा करके उसके जो अन्य बातें, बहु के अगेंस्ट है एक, बहुविध के उल्टा है एक विध यानी एक प्रकार का, तो ये 6 बातें पहले बताएंगे। बहु यानी अनेक चीजों के जानना, बहुविध यानी अनेक प्रकार की चीजें, क्षिप्र, क्षिप्र का अर्थ मालूम है, हाँ जल्दी जल्दी यानी जो फास्ट, जैसे फास्ट मूविंग कोई प्लेन है ट्रेन है या बिजली चमकती है कैसे फास्ट आते हैं तो उसको क्षिप्र कहते हैं। अनिश्रुत वो अभी बताएंगे सब,
अभी
बहु यानी अनेक,
एक किलो गेहूं और एक किलो अन्य ये सब साथ में, बहुविध
बहुविध में अनेक तो है परंतु वो अनेक प्रकार भी है उसमें, अनेक जाति के, जैसे अनेक जीव है वो तो बहु हो गए, और फिर वो यानी बहु द्रव्य हो गए, अब बहुविध द्रव्य अगर कहना है तो हाँ जाति अपेक्षा 6 होते हैं, ऐसा बहुविध हो जाएगी। अब यहाँ तो उसकी बात नहीं है, देखो बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रुत अनुक्त, अभी इसका उदाहरण देके आगे समझा रहे, ध्रुव और इनके प्रतिपक्षी यानी इनका उल्टा, एक पहले 6 नंबर देखे थे ना हमने, बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रुत अनुक्त और ध्रुव, अब इसके अगेंस्ट कौन कौन है, एक एक विध क्षिप्र के उल्टा अक्षिप्र यानी स्लो मूविंग ऐसा भी कह सकते हैं उसको, निश्रुत उक्त और अध्रुव, इनके भेद से 12 प्रकार का है। अब एक एक का अर्थ बताते हैं। उनमें बहुत वस्तुओं का एक साथ ग्रहण करना बहु अवग्रह है, यानी अनेक पदार्थों को एक साथ जानना। इस प्रकार का यह बहु अवग्रह अप्रसिद्ध भी नहीं है, यानी प्रसिद्ध है, क्योंकि योग्य देश में स्थित पांचों उंगलियों का एक साथ उपलम्ब पाया जाता है। हम पांचों उंगलियां एक साथ देख सकते हैं, फिर भी उसके लिए कहा कि योग्य देश में स्थित, अपने फोकस में हुआ रहने चाहिए, पीछे पकड़ो तो नहीं चलेगा। योग्य देश इन फ्रंट ऑफ योर आईज इन मर्यादा की क्वांटिटी, जैसे मैं मेरे सिर के पीछे ही पांच उंगलियां पकड़ू तो नहीं दिख रही है, तो क्यों नहीं दिख रही है? वो योग्य देश में नहीं है, क्योंकि ये पराधीनता है ना इंद्रियों ज्ञान में। यहाँ ये पांचों उंगलियां एकदम आंख के एकदम नजदीक, हमने आंखें बंद ही कर दी पांच उंगलियों से, या ऐसा खोल के उसमें रख दी तो नहीं दिखेगी। यानी उसका जो डिस्टेंस है देयर शुड बी इन फ्रंट, और वो भी थोड़ा ऐसे जो देखने योग्य डिस्टेंस में। हाँ, एक साथ उपलम्ब होता है ना, एक साथ उपलब्धि होती है ना, जानने में आते। एक ही वस्तु के उपलम्ब को एक अवग्रह कहते हैं। अब एक वस्तु को जानने, एक ही उंगली को जानी हमने, वो एक हो सकता है? शंका। अनेक धर्मात्मक वस्तुओं के पाए जाने से एक अवग्रह नहीं होता। शंकाकार की शंका है, प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, तो आप एक वस्तु को जान ही नहीं सकते, ऐसा कहना है उसका। एक नाम का अवग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि वहां अनेक धर्मात्मक वस्तु है। यदि होता तो एक धर्मात्मक वस्तु की सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि एक धर्मात्मक वस्तु का ग्रहण करने वाला प्रमाण पाया जाता है। यदि आप कहते हैं एक नाम का अवग्रह ज्ञान है, तो एक धर्म वाली वस्तु भी सिद्ध होती है, ऐसा शंकाकार का शंका है इसकी। यानी वो वस्तु के धर्म को ही वो एक वस्तु कहा है, एक धर्म की बात नहीं कह रही है, वस्तु के एक धर्म की बात नहीं हो रही, वस्तु एक है कि अनेक है उसकी बात चल रही है, उसमें उसका कन्फ्यूजन चल रहा है, उसका समाधान करेंगे आचार्य। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि एक वस्तु का ग्रहण करने वाला ज्ञान एक अवग्रह कहलाता है, एक धर्म को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नहीं कहा। वो तो एक धर्म को मुख्य करने वाला, वो तो श्रुत ज्ञान का भेद नहीं कहलाएगा, यह मति ज्ञान की बात चल रही है। तथा विधि और प्रतिषेध धर्मों के वस्तुपना नहीं है। क्या कहते हैं? विधि रूप धर्म और प्रतिषेध रूप धर्म। विधि यानी अस्ति और प्रतिषेध यानी नास्ति। जैसे धर्म के युगल पाए जाते हैं ना दो दो, वस्तु नित्य है और वस्तु अनित्य है, तो नित्य उसका विधि हमने धर्म कहेंगे हम, और अनित्य उसका प्रतिषेध वाला धर्म कहेंगे, या वस्तु अस्ति है नास्ति है उसके एक है अनेक है आदि जो हमने बात करते हैं हम, तो कहते हैं वो धर्म इट्सेल्फ वस्तु नहीं है, धर्मों के वस्तुपना नहीं है ना, वस्तु में धर्म है परंतु एक एक धर्म वह वस्तु नहीं है। द्रव्यों के आश्रय से गुण है परंतु एक एक गुण वह द्रव्य नहीं कहलाता। गुणों से द्रव्य बना है परंतु एक एक गुण अगर द्रव्य मानेंगे तो अनंत द्रव्य ही सिद्ध हो जाएंगे वहां। विधि और प्रतिषेध धर्मों के वस्तुपना नहीं है, जिससे उनमें अनेक अवग्रह हो सके। यदि एक धर्म एक वस्तु होती तो वहां अनेक अवग्रह हो सकता था, परंतु वस्तु में भले वो विधि और प्रतिषेध रूप धर्म युगल पाए जाते हैं, फिर भी वो वस्तु तो एक ही है, वो दो वस्तुएं नहीं होती है, है ना? वो वस्तु का एक अंश कहलाएगा, वस्तु नहीं कहलाएगी। किंतु विधि और प्रतिषेध धर्मों के समुदायात्मक एक वस्तु होती है, एक ही वस्तु में वो अस्ति नास्ति एक अनेक नित्य अनेक आदि जो धर्म युगल है उसको विधि और प्रतिषेध रूप धर्म कहा। ऐसे धर्म एक वस्तु में पाए जाते हैं। उस प्रकार की वस्तु के उपलम्ब को एक अवग्रह कहते हैं। ऐसी एक वस्तु को जानना उसको कहते हैं एक अवग्रह। अनेक वस्तु विषय ज्ञान को अनेक अवग्रह कहते हैं। जहाँ अनेक वस्तुएं हैं, यहाँ चार पेंसिलें रखी है और उसको हम एक साथ जान रहे हैं, तो ये हमारा अनेक अवग्रह हुआ। देखा ना हमने चक्षु से देखा, तो चक्षु इंद्रिय संबंधी अवग्रह हुआ, अनेक अवग्रह। किंतु प्रतिभास तो सर्व ही अनेक धर्मों का विषय करने वाला होता है, क्योंकि प्रतिभास कहो या ज्ञान कहो, जब हम वस्तु एक कहेंगे तो सभी अनेक धर्मों को विषय करती है वो। ज्ञान, ज्ञान ने एक वस्तु को जाना है, उसने अनेक धर्मों का विषय कर दिया, क्योंकि वे अनेक धर्म एक ही वस्तु में है। क्या कहते हैं, प्रतिभास तो सर्व ही अनेक धर्मों का विषय करने वाला होता है, क्योंकि विधि और प्रतिषेध इन दोनों में से किसी एक ही धर्म का अनुपलम्ब है, अर्थात दोनों में से एक को छोड़कर दूसरा नहीं पाया जाता, दोनों ही प्रधान और प्रधान रूप से साथ साथ पाए जाते हैं। क्या कहते हैं, विधि और प्रतिषेध दो धर्म हो गए तो दोनों ही साथ साथ पाए जाते हैं। वस्तु का नित्य धर्म है या अनित्य धर्म है, वो साथ साथ में होगा। ऐसा नहीं कि कभी कभी नित्य धर्म होता है, कभी कभी अनित्य धर्म होता है। यह विधि और प्रतिषेध रूप धर्म कहा उसको, तो वस्तु में एक साथ ही पाए जाते हैं। कौन सी दोनों चीजें? हाँ, तो एक वस्तु को जान रहे हैं ना आप,
वो पेंसिल है, उसके अलावा दूसरा कुछ है, वो भी मैं जान रहा।
हाँ, वो जान रहे, परंतु अभी हम उसकी बात नहीं करें। अभी हम एक वस्तु को अपने ग्रहण किया है ना, उसकी बात करें। मति ज्ञान के द्वारा जो हम जान रहे उसकी बात चल रही। वो तो विधि प्रतिषेध वो अन्य वस्तु नहीं है, ऐसा वाला प्रतिषेध वहां वर्तता है, वो अस्सी नस्सी वो ज्ञान में भी होता है, उसकी बात नहीं है। एक वस्तु में जो धर्म है उसकी यहाँ बात चर्चा चल रही। वस्तु तरीके ये एक है कि नहीं है, वस्तु ये कितनी है? एक है, उसकी बात चल रही, जो है उसकी बात चल रही है। ये अन्य वस्तु नहीं है उसकी अभी यहाँ बात नहीं चल रही। हाँ, अनुपलब्धि,
एक की जगह पे पांच पेंसिल होती तो पांच पेंसिल को अनुपलब्धि।
देखो, अनुपलब्धि का अर्थ अनुपलम्ब है ना, अनुपलब्धि यानी दोनों में से एक ही धर्म का अनुपलम्ब है, यानी एक ही धर्म पाया जाए ऐसा कभी नहीं होता, यानी एक ही धर्म की उपस्थिति हो ऐसा नहीं होता, हमेशा दोनों ही विधि और निषेध रूप वहाँ धर्म हो गए। हाँ, युगल में धर्म, हम ये धर्म युगल कहलाते, वो हमेशा एक साथ ही पाए जाएंगे। अब ये बहुविध किसे कहना, अभी उसमें प्रकार है, विध यानी प्रकार, यानी बहुत प्रकार के। पहले जो बहुत कहे थे तो अनेक यानी संख्या बताई थी, अब बहुविध में अनेक प्रकार आ जाए, उसकी जाति भिन्न भिन्न हो सकती है। देखो यहाँ कहे बहुत प्रकार के, अश्व, हस्ती, गौ और महिष। अश्व यानी घोड़े, हाथी, गौ गाय और महिष यानी भैंसे, आदि पदार्थों का ग्रहण करना बहुविध अवग्रह है। वो अनेक प्रकार हो गए ना, वो बहुविध हो गया। एक एक प्रकार के पदार्थ का ग्रहण करना एक विध अवग्रह है। एक ही प्रकार के अनेक हो जाए तो उसको एक विध कहेंगे, एक प्रकार के। एक में और एक विध में अंतर समझ में आए ना, वैसे बहु और बहुविध में है। बहु यानी अनेक, और अनेक जाति के उसको बहुविध कहेंगे। शंका, एक और एक विध में क्या भेद है? उसका समाधान, एक व्यक्ति रूप पदार्थ का ग्रहण करना एक अवग्रह है, यानी वो एक व्यक्ति रूप है, सिंगल है, सिंगल एंटिटी है वो। उसको कहते हैं एक अवग्रह। और एक जाति में स्थित एक पदार्थ का अथवा बहुत पदार्थों का ग्रहण करना एक विध अवग्रह है। एक विधेय ने एक जाति का, तो एक जाति का एक पदार्थ होगा तो भी वो एक विध कहलाएगा। यानी जब एक को जान रहे हैं तो उसी को एक विध भी अन्य अपेक्षा से कह सकते, एक और एक विध। यानी क्या, एक जाति में स्थित एक पदार्थ का अथवा बहुत पदार्थों का ग्रहण करना एक विध अवग्रह है। यानी एक विध में बहुत से भी आ सकते हैं, एक ही जाति के बहुत पदार्थ। अभी क्षिप्र की बात करेंगे, बहुविध के बाद क्षिप्र की बात की थी ना। क्षिप्र ने शीघ्रता पूर्वक, तो आशु अर्थात शीघ्रता पूर्वक वस्तु को ग्रहण करना क्षिप्र अवग्रह है। यानी शीघ्रता से उसको ग्रहण करना वो शीघ्र अवग्रह, और शनै शनै ग्रहण करना अक्षिप्र अवग्रह है। ये तो पदार्थों की बात चल रही है, ये 12 जो प्रकार है वो विषयों के हैं। जैसे हमने बोला ना, जैसे बिजली चमकती है और उसको ग्रहण करना वो क्षिप्र हो जाएगा। और स्लो मूविंग कोई है, चींटी जा रही है, ईयल जा रही है, तो उसको, ये तो स्लो मूविंग है, उसकी विषय में लगाना है। ये 12 प्रकार विषय में लगाना है, फिर भी उसको हम स्लोली ग्रहण करना, ऐसा वो वाक्य रचना तो ऐसी हो जाएगी ना। ग्रहण करना अक्षिप्र अवग्रह। अभिमुख अर्थ का ग्रहण करना निश्रुत अवग्रह। निश्रुते ने खुला और अनिश्रुते ने भी छिपा हुआ ढका हुआ। जैसे सामने अभिमुख है ने अपने सामने, सन्मुख, अभिमुख सन्मुख को कहते हैं, तो सन्मुख अर्थ का ग्रहण करना उसको निश्रुत कहेंगे। और अनभिमुख अर्थ का ग्रहण करना अनिश्रुत अवग्रह है। अनभिमुख है ने, जैसे अभी हाथी की सूंडी खाली ऊपर दिख रही है, बाकी पूरा हाथी पानी के नीचे है, तो भी हम उसको सूंड को देखकर यहाँ हाथ पूरा हाथी को जान लेते हैं, वो अनिश्रुत हो जाएगा। अथवा उपमान उपमेय भाव के द्वारा, देखो उपमान यानी उपमा देना हमें मालूम है ना, जैसे चांद की उपमा देती है, देते हैं स्त्री को, या उसकी आंखें मछली जैसी है, आदि जो कोई उपमा देते हैं तो उसको उपमान कहते हैं। और उपमेय यानी जिसको उपमा दिया जाती है उसको उपमेय कहते हैं। उपमान और उपमेय, तो उपमान और उपमेय भाव के द्वारा ग्रहण करना निश्रुत अवग्रह है। निश्रुत जैसे, यानी दूसरी पद्धति से बता रहे, एक पदार्थ की उपमा दी जाती है और दूसरा जिसको उपमा दी जाती है वो पदार्थ है। उपमा के द्वारा हम उस अन्य चीज को बतलाते हैं। जैसे कमल दल नयना, यानी क्या, अर्थात स्त्री के नयन कमल पत्र के समान है, तो कमल पत्र के पत्र ने वो पत्ता, उसके समान नयन वाली। उपमान उपमेय भाव के बिना ग्रहण करना, हाँ नयन उपमेय हुआ और कमल दल उपमान हुआ। उपमान उपमेय भाव के बिना ग्रहण करना अनिश्रुत अवग्रह है, और डायरेक्ट उसको बताना वो अनिश्रुत है। नियमित गुण विशिष्ट अर्थ का ग्रहण करना उक्त अवग्रह है। नियमित की बात हमने देखी थी, जैसा चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है, वो वर्ण है, वो उसका नियम नियमित हो गया पदार्थ, वैसे गुण विशिष्ट अर्थ का ग्रहण करना उक्त है। जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा धवल पदार्थ का ग्रहण करना और घ्राणेन्द्रिय के द्वारा सुगंध द्रव्य का ग्रहण करना इत्यादि, यानी अपने अपने विषय का ग्रहण करना उसको वहां नियमित विषय कहा। अनियमित गुण विशिष्ट द्रव्य का ग्रहण करना अनुक्त अवग्रह है। कहीं कहीं उक्त में वो बताया हुआ ऐसा भी कहते, जिसका हमने वर्णन किया है वो उक्त हो गया, और अनुक्त है उसके संबंध में कोई वर्णन नहीं किया है, फिर भी हमने डायरेक्ट जान लिया, उसको अनुक्त भी कहते। फिर भी यहाँ कुछ अलग ढंग से अच्छी तरह से बता रहे हैं। उक्त ने अपने अपने इंद्रिय अपने अपने विषय का ग्रहण करेंगे उसको उक्त कहा, और अनुक्त में क्या बता रहे देखो, अनियमित गुण विशिष्ट, यानी उस इंद्रिय के वो विषय नहीं है वो गुण। तो जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा गुड़ आदि के रस का ग्रहण करना, चक्षु इंद्रिय के द्वारा गुड़ के रस को ग्रहण करना, और घ्राणेन्द्रिय के द्वारा दही आदि के रस का ग्रहण करना, यह अनुक्त अवग्रह अनिश्रुत अवग्रह के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि एक वस्तु के ग्रहण काल में ही उससे पृथकभूत वस्तु का यानी उपरिम भाग के ग्रहण काल में ही परभाग का और अंगुली के ग्रहण काल में ही देवदत्त का ग्रहण करना अनिश्रुत अवग्रह माना गया है। ये इसमें बहुत अच्छी चर्चा है इसकी मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र में, वो प्रत्येक इंद्रिय संबंधी जो उक्त अनुक्त अनुसृत उसकी चर्चा की, बहुत विस्तार से चर्चा की उसकी। यहाँ कुछ अलग बात से अलग अपेक्षा से बता रहे, देखो नीचे से दूसरी लाइन, एक वस्तु के ग्रहण काल में ही यानी जब एक वस्तु को जान रहे हैं उसी काल में उससे पृथकभूत वस्तु का ग्रहण करना ऐसा लेना, एक वस्तु के ग्रहण काल में ही उससे पृथकभूत वस्तु का ग्रहण करना अनिश्रुत अवग्रह माना गया, ये मति ज्ञान संबंधी है, नहीं तो वो तो शुद्ध ज्ञान वाला नहीं है, क्योंकि इसको भी दूसरे पदार्थ को भी मति ज्ञान से जान रहा है, दूसरे पदार्थ को ऐसा वहां वो है नहीं और अन्य पद्धति से उसको जान रहे ऐसी बात नहीं है। और दूसरी परिभाषा क्या लिखी, उपरिम भाग के ग्रहण काल में ही परभाग का ग्रहण करना अनिश्रुत अवग्रह। तीसरी पद्धति से क्या बताया, अंगुली के ग्रहण काल में ही देवदत्त का ग्रहण करना अनिश्रुत अवग्रह माना गया, जो हमने वो हाथी की सूंड वगैरह देखी थी। नित्यता से अर्थात निरंतर रूप से ग्रहण करना ध्रुव अवग्रह है, कांस्टेंट वो चलता रहेगा वो ध्रुव, और उससे विपरीत ग्रहण करना अध्रुव अवग्रह है। ये हम ग्रहण करना यानी वो ज्ञान की ओर लेते हैं, उसको विषय में लेना है, इसको विषय में लेना। इस प्रकार यहां आदि शेष तीन ज्ञानों के भी, ये तो अवग्रह के 12 भेद बताए, ऐसे ही 12 भेद इहा के बारे में हो गए, आदि में इहा के बारे में 12
तीन बताए ना, इसका समझ नहीं
आता। वही देखो आपका प्रश्न है, ये अनुक्त और अनिश्रुत के बारे में जो बात चल रही है उसमें उन्होंने क्या बताया देखेंगे, फिर आप तत्वार सूत्र जरूर जाके देखना, हाँ फिर पढ़ना आज उसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में। देखो नहीं, अनियमित अनिश्रुत नहीं है ये बात बता रहे। देखो नीचे से तीसरी लाइन में क्या लिखा, अनुक्त अवग्रह अनिश्रुत अवग्रह के अंतर्गत नहीं है, क्या लेना अनुसृत, अनुक्त में उन्होंने क्या बताया, किसी अन्य इंद्रिय का जो विषय इसको ये अन्य विषय के द्वारा जान रहा है वो अनुक्त हुआ, बराबर। और अनिश्रुत में कोई एक छोटा अवयव के द्वारा पूरे को जान लेना, हाँ हाँ चक्षु से वो गुण संबंधी रस को जाना, तो वो तो अनुक्त में आ गया। और यहाँ किसी एक अवयव के द्वारा पूरा अवयव क्यों जाना, वो अनिश्चित में है। फिर भी आप बराबर अच्छी तरह से पढ़ना उसमें, क्योंकि ये क्या डेफिनेशंस बनाते हैं तो उसमें बहुत अटपटा लगता है, ये शब्द अपने पहचान के नहीं है। इस प्रकार इहा आदि शेष तीन ज्ञानों के, ये तीन ज्ञान कौन से? हाँ, इहा, अवय और धारणा। यहाँ अवग्रह संबंधी 12 भेद बताए, वैसे इहा, अवय और धारणा संबंधी भी जानना, भेद निरूपण करना चाहिए। अब ये कौन कौन से इंद्रिय संबंधी कितने हो गए? देखो, एक इंद्रिय संबंधी अवग्रह, इहा, अवय और धारणा, चार हो गए। अभी हम चक्षु संबंधी देखते हैं। चक्षु संबंधी क्या क्या हुआ? अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, और हर एक के 12 भेद। अवग्रह के 12, इहा के 12, अवाय के 12 और धारणा के 12। तो चक्षु इंद्रिय संबंधी कितने भेद हो गए मति ज्ञान के? हाँ, 48, 48। बराबर है ना? यानी चार तो ज्ञान की अपेक्षा भेद किए, अवग्रह, इवाय, उसके क्रम से, और जिन पदार्थों को जान रहा है उस संबंध से मति ज्ञान के भेद किए। ज्ञान तो ज्ञान है, परंतु कौन से पदार्थों का किस तरह से जान रहा है उसकी अपेक्षा से उसमें भेद किए। तो ये सारे 48 भेद चक्षु इंद्रिय संबंधी हुए। मन संबंधी उतने ही 48 भेद होगी। अभी हम स्पर्शन इंद्रिय की बात करेंगे। स्पर्शन इंद्रिय में क्या होगा? पहले व्यंजनावग्रह होगा, फिर अर्थावग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय और फिर धारणा, 5 हो गए। स्पर्शन संबंधी 5 और हर एक के 12। तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी कितने हो गए? 60 हो गए। घ्राण इंद्रिय संबंधी 60 हो गए। रसन इंद्रिय संबंधी 60 हो गए और कर्ण इंद्रिय संबंधी 60 हो गए। 240 वहाँ हो जाएगी। और हमने 48 और 48 96 चक्षु और मन के देखे थे, तो 240 और 96 कितने हुआ? जरा बेरिज करके बता, 336 भेद मति ज्ञान के टोटल हो जाएंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे यहाँ से। इंदु बिन ख्याल में आता है ना? हाँ, देखो सेकंड लाइन है, दूसरे पैराग्राफ की। चक्षु इंद्रिय और नौ इंद्रिय ने मन, और मन के, अभी मैं उनका वाक्य पढ़ती हूँ, फिर थोड़ा करेक्शन बताऊंगी। 48 अभिनिबोधिक ज्ञान संबंधी विकल्प होते हैं। हम जैसी भाषा बोलते हैं उसमें ऐसा लेंगे, चक्षु इंद्रिय और मन के अभिनिबोधिक ज्ञान संबंधी 48 विकल्प होते हैं। ये तो उनको जो कहना है वही हम कह रहे हैं। ये 48 शब्द विकल्प के साथ रखेंगे तो ये 48 भेद है, ये ख्याल में जल्दी आता है। नहीं तो फिर 48 करके रुकना और अभिनिबोधिक संबंधी विकल्प होते हैं ऐसा कहना। ये तो समझने के लिए, उसमें कोई करेक्शन नहीं करे, परंतु हम समझने के लिए इस तरह से समझे। क्योंकि चक्षु और मन इन दोनों के व्यंजनावग्रह का अभाव है, उसमें डायरेक्ट अर्थावग्रह होता है, इसलिए अर्थावग्रह, इहा, अवाय, धारणा और हरेक के 12 भेद, 48 भेद हो जाते हैं। यानी चक्षु के 48 और मन के 48। शेष चारों इंद्रियों के 60 मति ज्ञान संबंधी भेद होते हैं, यानी मति ज्ञान संबंधी 60 भेद होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी 60 शब्द वो भेद के साथ लगाएंगे तो समझने में आसान होता है। क्योंकि अभी उनमें क्या क्या होता है? उनमें अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह इन दोनों का भी होना संभव है, यानी पहले व्यंजनावग्रह, फिर अर्थावग्रह और बाद में यह अवाय धारणा। इसलिए 5 ज्ञान के भेद और 12 विषयों के भेद, 12 × 5 = 60, एक एक इंद्रिय संबंधी भेद हो गया। इस तरह से चक्षु और मन के दोनों के मिलके 48 यहाँ नहीं लिखा है, पर हम समझेंगे ना। और अन्य चार के 60 × 4 240, सब मिलकर 336 भेद हो जाएंगे। इस प्रकार के ज्ञान का जो आवरण करता है, ये तो बात कहाँ से निकली थी? ज्ञान आवरण से निकली थी। तो मति ज्ञान के ऐसे जो भेद है उनका जो आवरण करता है उसे अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। ये तो अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्म की बात यहाँ हो चुकी, हम अभी उत्तर प्रकृतियां देख रहे हैं। ज्ञानावरण की 5 उत्तर प्रकृतियां देखी थी, उसमें से ये पहला नंबर की हो गई। अब श्रुत ज्ञानावरण की बात चल रही। श्रुत ज्ञान के आवरण करने वाले कर्म को श्रुत ज्ञानावरणीय कहते हैं। किस में? सभी के ने सभी जीवों के, हाँ एक जीव का जो ये अभी हमने इतने सारे भेद देखे, उसमें कौन से भेद आप कम ज्यादा की अपेक्षा से देख रहे? ज्ञान की कैपेसिटी, हाँ होती है ना, कम ज्यादा होती है। हम देख रहे हैं फास्ट ऑब्जेक्ट वो है, आपको कुछ दिखाया और बंद किया, तो आपको जितना ग्रहण किया मुझे उतना नहीं हो सकेगा। आप अब एक ही जीव की बात, हाँ हाँ होता है ना, ऐसा वेरिएशन है इसमें, तो वेरिएशन है क्योंकि वही तो बताते हैं ना ज्ञानावरण की वहाँ अधिकता हीनता है। एक शोभशम की दृष्टि से भी होगा, अभी द्रवेंद्रियों की भी वहाँ पराधीनता है, तो उस संबंधी भी निमित्त वहाँ बनेगा। अभी आपका ज्ञान इंद्रिया भी बराबर है वहाँ और ज्ञान भी बराबर है, अन्य भी निमित्त देखेंगे हम, प्रकाश नहीं था इसलिए नहीं दिखा, ये तो वेरिएशन होती है उसमें। अब श्रुत ज्ञान के आवरण करने वाले कर्म को श्रुत ज्ञानावरणीय कहते हैं। उनमें इंद्रियों से ग्रहण किए गए पदार्थ से, अब ये डेफिनेशन खास बात ख्याल में लेनी है। पहले में क्या है, इंद्रियों से ग्रहण किए गए पदार्थ से ये कौन सा ज्ञान हुआ? मति ज्ञान हुआ। उससे पृथकभूत पदार्थ का ग्रहण करना श्रुत ज्ञान है। उस पदार्थ के अवलंबन तो उस पदार्थ का लिया और जाना, अभी उस अन्य पदार्थ को जानने का कार्य कर रहे, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे शब्द से यानी शब्द, ये उसका ज्ञान हुआ, कौन सा मति ज्ञान है ये, कौन से इंद्रिय संबंधी? कर्ण इंद्रिय संबंधी, क्योंकि शब्द ने आवाज की अपेक्षा भी हम देख रहे हैं। तो शब्द से, शब्द सुनकर, तो देखेंगे वो चक्षु संबंधी शब्द ज्ञान हुआ, और सुना एक साथ तो दो इंद्रियों का काम होता नहीं है। तो आप ही बताइए, पहले देखा के पहले सुना आपने? हाँ नहीं 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 नहीं, उनका पहले क्या होता होगा, कोई भी चीज हम देखते पहले कि सुनते पहले? नहीं नहीं, सब इंद्रिया खुली है आपके क्या? देखो ये आपको तो अनुभव की बात मैं बता रही हूँ। बिजली चमकती है तो हम आवाज पहले सुनते हैं कि वहाँ तो वो क्यों, वो भी उसका क्यों है, क्योंकि चक्षु संबंधी हम डायरेक्ट देखते हैं, और जब तक वो अपने कान में आकर नहीं टकराते उसके लिए टाइम लगता है। दूसरी भाषा में वो साउंड को ट्रैवल होने में टाइम लगता है, लाइट ट्रैवल्स फास्टर, ऐसा कहे, वो तो साइंस की भाषा है ना। तो यहाँ अपने क्या है, उसमें इतना फ्रैक्शन ऑफ वो जो कुछ अवली का भी डिफरेंस है, अंतर्मूर्त भी होता है, अंतर्मूर्त तक देखे बिना आपको वो चक्षु संबंधी भी ज्ञान नहीं हो रहा है। और जब ये शोभशम ज्ञान है, असंख्यात समयों तक एक ही विषय को जानेंगे तो उसका ग्रहण होता है। एक समय वाली चीज अपने ख्याल में नहीं आती है कि हमने जाना भी, ज्ञान होता है जरूर, ज्ञान नहीं होता ऐसी बात नहीं है, अवग्रह तो चलेगा वहां धारणा तक भी बात नहीं है, अपने ख्याल में आवे, बुद्धिपूर्वक ज्ञान में आवे उसकी बात में करें। कषाय भी हो रहे हैं, थोड़ा होके छूट गया समझे, वो तो चलता रहता है ना। अभी हमने कोई शब्द सुना, जैसे आपने ये शब्द की बात उठाई, मैंने सुना भी और देखा भी, तो एक इंद्रियों के द्वारा आपको ग्रहण हुआ, यानी अंतर्मूर्त तक वहाँ उपयोग टिका आपका, और फिर वो उपयोग पलट कर चक्षु इंद्रिय संबंधी हुआ तब उसका ग्रहण हुआ, तो ये अंतर्मूर्त कितना छोटा होगा, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि हम एक साथ सुन भी रहे और देख भी रहे, ये सारी जो अन्य अन्य इंद्रियों के द्वारा जो उपयोग का पलटना इतना फास्ट होता है, ये तो हम देख रहे हैं। अभी आप एक अगरबत्ती ले लो जलती हुई और ऐसे जोर से घुमा, पूरा सर्कल दिख रहा है। वैसे उस वो जो कंटिन्यूटी रहती है ना, वैसे ये इतना फास्ट बदलता है। हमें ऐसा लगता है हम पांचों इंद्रियों के द्वारा एक साथ ग्रहण कर रहे, सुन भी रहे, देख रहे। देखो जैसे शब्द से, यानी शब्द सुना, उसके द्वारा घट आदि पदार्थों को जानना, अथवा धूम से अग्नि का ग्रहण करना। हमें ऐसा लगता है श्रुत ज्ञान यानी सुनकर ही होता होगा, परंतु एक पदार्थ को देखकर दूसरे पदार्थ का भी ज्ञान होता है। जैसे हमने देखा तो धूम को और जाना अग्नि को, वह श्रुत ज्ञान 20 प्रकार का है। अब जैसे आप पूछेंगे एक इंद्रिय को होता होगा कि नहीं श्रुत ज्ञान, वो क्या सुनता होगा? हाँ, स्पर्शन इंद्रिय के। तो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा उसने मति ज्ञान से किसी पदार्थ को जाना, उसने उष्णता को जाना, सूरज जिस दिशा से आ रहे उस तरफ से उसको उष्णता प्रकाश कुछ उसने स्पर्शन के द्वारा जाना। हाँ, और उस ओर उसके, वो तो हम देखते हैं पौधे तो उस ओर बढ़ते हैं, तो ये अपने को हितकारी है ऐसा उसमें कुछ अंदर जो ज्ञान हुआ वो उसका श्रुत ज्ञान कहलाएगा। जैसे भी हम देखते हैं ना, कोई चींटी जा रही है और हमने यहाँ कुछ बीच में पेपर रखा तो अन्यत्र करके जाती है, यानी अपने लिए ये कुछ भयकारी है इतना वहाँ होता है ना उसका। वहाँ तो स्पर्श से उसने कुछ जाना, और ये अपने हितकारी है कि अहितकारी है ये भी वहाँ जान लिया, वो उसका श्रुत ज्ञान हो जाता है। आपको आपके कषाय का ज्ञान हुआ, आप ही बताइए वो कौन सा ज्ञान होगा? अपने में भय हुआ उसको जाना। कषाय को जाना तो भय भी कषाय है ना। मैंने उदाहरण और एक दिया आपको, हमें दुख हुआ ये हमने जाना, हमें हर्ष हुआ ये हमने जाना, ये बातें जान रहे ना हम, तो वो नजदीकता है ना उसकी। तो ये कौन से इंद्रियों के द्वारा जाना? किसी भी इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना। हाँ अगर मन के द्वारा कहेंगे तो अन्य जो एक इंद्रियादि जीव है वो भय को जान रहे होगी कि नहीं? वो भी अपने में उठने वाले जो कषाय यथा योग्य, जैसे देखकर हमको इसके कारण कषाय होता है वैसा वैसा उसको नहीं चल रहा है, परंतु वहाँ भी है ना, वहाँ तो उसके लिए कोई इंद्रियों की जरूरत नहीं है। वो मति ज्ञान में आएगा ऐसा, परंतु किसमें? ये तो इंद्रिय ज्ञान की बात है। हाँ होता है। वो तो चक्षु इंद्रिय संबंधी, वो कहते चक्षु इंद्रिय संबंधी हुआ। ये अपने में उठने वाले राग द्वेष को तो वो स्वयं जान रहे ना, अपने ज्ञान से जान रहे। वो मति श्रुत ज्ञान वो इसमें नहीं आता है। ये परपदार्थ संबंधी के भेद चल रहे, क्रोध मान माया लोभ के नहीं, वो तो जीव के ही प्रदेशों में उठ रहे, जीव के अपने प्रदेशों में उठने वाले भाव है ना ये। वैसे देखो जब अभी हम प्रवचन सार में देख रहे तो वो जीव के अपने कहलाएंगे, वो पर दूसरे संबंधी नहीं, इंद्रिय संबंधी नहीं है। वहाँ इंद्रियों से नहीं वो जानता है कि मेरे को क्रोध है कि मान है कि माया है। वह श्रुत ज्ञान भी इस प्रकार का है। अब यहाँ श्रुत ज्ञान की बात हो रही, जैसे अभी श्रुत ज्ञान यानी वो अभी बताएंगे, हम क्रम से पढ़ेंगे उसको। पर्याय, पर्याय समास, ये हमने नाम सुना था ना पर्याय वाला। सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त जु को सबसे जघन्य ज्ञान है, उसका नाम है पर्याय ज्ञान। उस ज्ञान में कुछ कुछ अंश बढ़ते हुए अन्य अन्य जो ज्ञान के ही भेद उसको स्थान कहलाते हैं। यानी अभी मिनिमम जिसका ज्ञान है उसको पर्याय कहेंगे। अब उसमें जो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है उसका एक भाग कुछ उसमें बढ़ गया, ये दूसरा एक भेद हो गया, उसमें और कुछ बढ़ गया, वो तीसरा भेद हुआ, और कुछ बढ़ गया, चौथा भेद हो गया। तो ऐसे बढ़ते हुए भेद के बहुत सारे जो भेद हो गए, जब तक अक्षर नाम का ज्ञान नहीं आता उसके पहले पहले तक, तो उसको हम कहेंगे पर्याय समास। फिर अक्षर, अक्षर समास, यहाँ तो पर्याय और पर्याय समास तक, ये पर्याय और अक्षर के बीच में पर्याय समास नाम के ज्ञान है, उसमें तो वो तो षट स्थान वृद्धि के बहुत सारे स्थान हो गए, अनंत भाग बढ़ गया, अनंत भाग बढ़ गया, अनंत भाग बढ़ गया, वो अनंत भाग वृद्धि के स्थान। फिर एक बार असंख्यात वह भाग बढ़ गया, वो असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान। फिर वो पूरा अभी षट स्थान का चक्कर बहुत लंबा है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते उसके भी स्थान बहुत सारे हो गए, असंख्यात स्थान हो जाएंगे। तो उससे अनंत गुणा ऐसा ये अक्षर वाला ज्ञान है, पर्याय ज्ञान से अनंत गुणा अक्षर नाम का ज्ञान। पर अक्षर ज्ञान में जो अक्षर समास वाले भेद है ना, एक एक अक्षर से बढ़ते हुए ज्ञान होंगे। एक अक्षर का ज्ञान वो एक अक्षर ज्ञान कहलाएगा, फिर दो अक्षर, फिर तीन अक्षर, फिर चार अक्षर, एक एक अक्षर से बढ़ते हुए पद तक, यानी वो उसके संख्यात भेद हो गए। यानी अक्षर समास ये भेद कितने हो गए, संख्यात हो गए, क्योंकि शब्द संख्यात है। परंतु पर्याय समास के कितने भेद है वो तो बहुत सारे हैं, अनंत में चले जाएंगे। देखो पद, पद समास, पद यानी विशिष्ट अक्षरों का जो ग्रुप होगा उसको हम पद कहेंगे, और पद समास यानी उसमें और बढ़ते हुए अक्षर, एक एक अक्षर उसमें भी बढ़ता जाएगा, तो जाके आगे संघात होगा। अब हर एक की डेफिनेशन आने वाली आगे। हाँ, वो संघात नाम कर्म अलग बात है। वो संघात नाम कर्म का कार्य क्या है, वो छिद्र बिना के, छिद्र के बिना इसे शरीर का जो एक ऐसे स्कंध की रचना होती है उसको संघात नाम कर्म कहते हैं। और यहाँ जो संघात है ये पदों के समूह को संघात कहा है, विशिष्ट इतने पदों के समूह हुआ उसका नाम है यहाँ संघात। उसमें और एक एक अक्षर बढ़ते जाएगा तो उसको कहेंगे संघात समास। फिर नाम आए प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति समास। फिर अनुयोग, अनुयोग समास। प्रावृत, 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 प्रावृत समास। प्रावृत, प्रावृत समास। वस्तु, वस्तु समास। पूर्व और पूर्व समास। ये पूर्व नाम सुना है, हाँ ये 14 पूर्वों की बात है ना। अब ये अलग अलग का अर्थ बताएंगे। क्षरण अर्थात विनाश के अभाव से, अभाव होने से केवल ज्ञान अक्षर कहलाता है। क्षर होना यानी विनाश होना, अक्षर यानी जिसका विनाश नहीं होता उसको अक्षर कहते हैं। उसका अनंतमा भाग पर्याय नाम का मति ज्ञान है। यानी अक्षर नाम का एक शुद्ध ज्ञान भी है और केवल ज्ञान को भी अक्षर ज्ञान कहते हैं, ये दोनों ओर से उन्होंने बताया। और उसका जो अनंतवा भाग है उसका नाम है पर्याय ज्ञान, पर्याय नाम का मति ज्ञान। ये तो मैं तो शुद्ध ज्ञान पर ही लगाती थी, यहाँ तो पर्याय नाम का मति ज्ञान भी कहलाया। और पर्याय मति ज्ञान के साथ होता है वो पर्याय शुद्ध ज्ञान कहलाए, ये बात यहाँ खास प्रकार से कही है, जो अन्यत्र कहीं यानी मेरे तो देखने में नहीं आई थी, मुझे ये बात नहीं लगी। क्योंकि पर्याय ये श्रुत ज्ञान का भेद है ऐसे हमने गोमटसार में पढ़ा था, यहाँ तो मति ज्ञान को भी पर्याय नाम का ज्ञान कहा। और उस मति ज्ञान के साथ जो होगा उतना ही मिनिमम ज्ञान श्रुत ज्ञान उसको पर्याय नाम का श्रुत ज्ञान कहेंगे। हाँ ये बात नहीं, देखो ये क्या कहा यार, देखो केवल ज्ञान को अक्षर कहा और उसका अनंतवा भाग पर्याय नाम का मति ज्ञान है, मति ज्ञान को यहाँ पर्याय, पर्याय नाम के मति ज्ञान की बात हो रही है। वह पर्याय नाम का मति ज्ञान केवल ज्ञान के समान निरावरण और अविनाशी है। क्या कहते हैं, जैसे केवल ज्ञान कैसा है, निरावरण है, बिना आवरण वाला है। कौन सा आवरण नहीं उसको, क्या अकेला केवल ज्ञान आवरण नहीं है, पांचों ही ज्ञान आवरण नहीं है। हाँ ख्याल है, वैसे ये पर्याय नाम का जो ज्ञान है वो कभी भी आवरित नहीं होता त्रिकाल में किसी भी जीव के, क्योंकि उतना तो ज्ञान हमेशा खुला तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए पर्याय ज्ञान को निरावरण ज्ञान कहा है, और कैसा कहा है, अविनाशी कहा है, उसका विनाश नहीं हो जाए, नहीं तो जीव जड़ हो जाएगा। तो केवल ज्ञान के साथ पर्याय ज्ञान की तुलना की। हाँ सेम विशेषण मिल गए। यानी वो अक्षर क्यों कहा, वो उसका कभी विनाश नहीं होगा, जीव का स्वभाव का अंश है, वो कभी स्वभाव रहित नहीं हो सकता है। देखो इस हाँ उसका अनंत भाग उस अपेक्षा से, फिर भी पर्याय नाम का जो मति ज्ञान है उसको भी अक्षर कहेंगे, कि वो विनाश रहित है, अविनाशी है और वो निरावरण है। जैसे केवल ज्ञान निरावरण है वैसे ये भी निरावरण ज्ञान है। इस सूक्ष्म निगोद लब्धि अक्षर से, लब्धि अक्षर कहा इसको, लब्धि अक्षर भी कहते हैं, जो शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। ये सूक्ष्म निगोद लब्धि अक्षर ये मति ज्ञान का भेद हुआ, और उससे जो शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है वह भी कार्य में कारण के उपचार से पर्याय कहलाता है। यानी जो शुद्ध ज्ञान को पर्याय नाम का शुद्ध ज्ञान कहा वो तो उपचार हुआ। क्यों उपचार किया, वो शुद्ध ज्ञान तो कार्य है। हमेशा हम देखते हैं शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक उत्पन्न होता है, तो हम शब्द घट शब्द सुनकर घट का ज्ञान किया तो हमने वो शब्द को उसका कारण है, वो कारण में कार्य में कारण का उपचार किया, ऐसा कहेंगे। वैसे यहाँ जो पर्याय नाम का शुद्ध ज्ञान हुआ उसका कारण कौन है, वो जो सूक्ष्म निगोद लब्धि अक्षर ज्ञान कहा उसको, मति ज्ञान का भेद, जिसका सचमुच नाम पर्याय ज्ञान था उससे यह श्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसलिए श्रुत ज्ञान को भी पर्याय ज्ञान कहा। इस पर्याय श्रुत ज्ञान से, ये जो पर्याय श्रुत ज्ञान है मिनिमम पॉसिबल श्रुत ज्ञान, उससे जो अनंतवे भाग से अधिक श्रुत ज्ञान होता है वह पर्याय समास कहलाता है। यानी कम से कम जो श्रुत ज्ञान की जो डिग्री है जो पॉसिबल है ये पर्याय नाम का ज्ञान हुआ। इसमें भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, किसी अन्य जीव को थोड़ा ज़्यादा श्रुत ज्ञान है, वो कितना ज़्यादा है, कितनी वृद्धि है उसमें, तो ये जो ओरिजिनल है पर्याय ज्ञान उसका अनंत भाग करो और उसी में मिला दो तो उसको कहते हैं अनंत भाग वृद्धि, अनंतवा भाग वृद्धि, उसी को कहते हैं अनंत भाग वृद्धि। जैसे हजार का हमने दसवा भाग किया या सौवा भाग किया, हजार का सौवा भाग कितना हुआ, दस हो गए, दस उसमें मिला दिए तो एक हजार और दस ये हम क्या कहलाएंगे उसको, सौवा भाग वृद्धि, हजार में सौवा भाग की वृद्धि हुई, तो इसको कहते हैं अनंत भाग वृद्धि। ये पर्याय समास का पहला स्थान हुआ,
पहले वाला पहली घटी
पर्याय, ये पर्याय ज्ञान है। अब यहाँ से लेकर ये कोई यहाँ अक्षर नाम का ज्ञान आने वाला है आगे चलकर, तो अक्षर ज्ञान से एक कम वाला ज्ञान और पर्याय से एक अधिक वाला, ये जो बीच में ज्ञान के बहुत सारे अलग अलग भेद है बढ़ते हुए ज्ञान के, पर्याय हमने मिनिमम लिया, अक्षर वाला मैक्सिमम लिया, इसके दोनों के बीच में जो कोई अधिक 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 ज्ञान के अलग अलग जो भेद अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं उसको कहते हैं पर्याय समास। षट्स्थान वृद्धि एक बार होती है तो उसमें असंख्यात स्थान आ जाते हैं, ऐसे एक बार दो बार तीन बार चार बार असंख्यात लोग बार षट्स्थान वृद्धि होती है, यानी बीच में, यानी बीच में एक बार अनंत, एक बार षट्स्थान वृद्धि होती है तो एक स्थान उसका अनंत गुणा वृद्धि वाला आता है, लास्ट वाला अनंत गुणा वृद्धि जब एक बार होती है तो एक षट्स्थान वृद्धि समाप्त होती है। तो अनंत गुणा वृद्धि के बीच में अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणा, अभी गुणित प्रमाण में संख्यात गुणा वृद्धि, असंख्यात गुणा वृद्धि और फिर अनंत गुणा वृद्धि। अनंत गुणा वृद्धि तो एक ही बार आती है, परंतु ये बाकी सब अनंत बार आते जाते बीच में। तो ऐसा एक बार षट्स्थान वृद्धि हुई, दूसरे बार हुई, तीसरे बार हुई, ऐसे षट्स्थान वृद्धि के भी असंख्यात लोग बार उसके स्थान आते। ये पर्याय समास में, पर्याय समास में उसकी बात अब बताएंगे हम। देखो क्या कहते हैं, अनंत भाग वृद्धि, यानी अनंत वा भाग करके उसी में मिला दो, वो अगला वाला भेद होगा। ऐसे अनंत भाग वृद्धि बहुत बार हो जाने के बाद एक बार जाकर असंख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी, फिर अनंत भाग वृद्धि की गाड़ी चलेगी, फिर कभी जाकर दूसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी, फिर अनंत भाग वृद्धि चलती रहेगी, फिर तीसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि। ऐसे असंख्यात भाग वृद्धि भी इतने इतने बार हो जाएगी, तब एक बार जाके संख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी, और हर एक के दो दो के बीच में अनंत भाग वृद्धि तो चलती रहती है। हमने यहाँ लिया था वो षट्स्थान वृद्धि का एक विषय लिया था यहाँ, हाँ कल इसको लेंगे, अभी ये चार लाइन पढ़ती हूँ समझेंगे इसको। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, ये किसको कहना वो बात हम कल लिखेंगे, अभी ये पढ़ते हैं। असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, इन छह वृद्धियों के समुदायात्मक यह एक षड वृद्धि होती है, यानी इसको कहते हैं एक षट्स्थान पतित वृद्धि। ये छह स्थान कहे परंतु छह बार वृद्धि नहीं है। इस प्रकार की अभी ये एक षड वृद्धि हुई, ऐसी षड वृद्धियां कितनी होती है, इस प्रकार की असंख्यात लोक प्रमाण षड वृद्धियां ऊपर जाकर, ऊपर जाकर यानी पर्याय के आगे अनंत, ये असंख्यात कितनी असंख्यात, असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक दो लोक ऐसे असंख्यात लोक में जितने प्रदेश होंगे उतनी बार षट्स्थान पतित वृद्धि होने पर पर्याय समास नामक श्रुत ज्ञान का अंतिम विकल्प होता है। उसके एक स्थान आगे जाएंगे तो अक्षर नाम का विकल्प आएगा, उस अंतिम विकल्प को अनंत रूपों से गुणित करने पर, यानी उसको अनंत गुणा करेंगे, पर्याय समास वाला जो अंतिम भेद है यहाँ वाला, उसको अनंत गुणा करेंगे तो अक्षर नाम का श्रुत ज्ञान होगा। हाँ, एक इंद्रियों में तो अक्षर नामक श्रुत ज्ञान होता है इसकी। ये षट्स्थान पूरा ही हम कल ले लेंगे, थोड़ा उसको समझेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत